ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भागवतम् अनुवाद और अनुवाद संस्कृत से अंग्रेजी और तत्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा प्रथम स्कंद अध्याय 13 श्लोक संख्या 27 एवं गृहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तदीहया अत्यक्रामद्विज्ञातः कालः परमदुस्तरः एवं गृहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तदीहया अत्यक्रामद्विज्ञातः कालः परमदुस्तरः जो लोग घरेलू मामलों में अत्यधिक लिप्त रहते हैं और उन्हीं के विचारों में मग्न रहते जाते हैं उन्हें दुस्तर सनातन काल न जाने ही घर डर दबोचता है। तात्पर्य मैं अब सुखी हूँ, अब सब कुछ ठीक ठीक है, मेरे पास बैंक में प्रचुर धन है, अब मैं अपने लड़कों को काफी जागीर दे सकता हूँ, अब मैं सफल हूँ। ये भिखारी सन्यासी ईश्वर पर आश्रित तो रहते हैं, किंतु वे मेरे सामने हाथ फैलाने आते हैं, अतएव मैं परमेश्वर से भी बड़का हूँ। ये कुछ विचार है जो उन प्रमत्त आसक्त गृहस्थों के मनों में उमड़ते घुमरते रहते हैं, जो शाश्वत काल के प्रति अंधे रहते हैं। हमारी आयु सीमित है और परम इच्छा से नियत किए गए काल के विपरीत ऐसे एक क्षण भी बड़ा पाना संभव नहीं है। मनुष्यों के लिए ऐसा समय अत्यंत मूल्यवान है और ऐसे इसे सतर्कता से बिताया जाना चाहिए, क्योंकि अदृश्य रूप से बीते एक क्षण के कठिन कमाई से संग्रह किए गए हजारों सोने के सिक्कों से भी बदला नहीं जा सकता। मानव जीवन का प्रत्येक क्षण अंततः जीवन की समस्याओं को हल करने के निमित्त अर्थात बारंबार जन्म मृत्यु एवं 84 लाख योनियों में भटकते रहने से छुटकारा पाने के लिए है। यह भौतिक शरीर जो जन्म तथा मृत्यु रोग तथा बुढ़ापे से ग्रस्त होते रहते हैं, जीव के समस्या कष्टों की जड़ है, अन्यथा जीव तो शाश्वत है, न तो वह कभी जन्मते हैं और कभी मरते हैं। मूर्ख लोग इस समस्या को भूल जाते हैं। उन्हें इसका पता ही नहीं रहता कि जीवन की समस्याओं को किस तरह हल किया जाए। उल्टे वे क्षणिक पारिवारिक झंझटों में उलझे रहते हैं और उनकी समझ में यह नहीं आता कि शाश्वत समय आदर्श रूप से बीतता जा रहा है। उनकी सीमित आयु हर क्षण घटती जा रही है और जन्म मृत्यु एवं रोग तथा बुढ़ापे के चक्कर ही सबसे बड़ी समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है ही भ्रम कहलाते हैं। किंतु जो व्यक्ति भगवान की भक्तिमय सेवा के प्रति जागरूक रहते हैं उस पर यह भ्रम प्रभाव नहीं डाल सकता। युधिष्ठिर महाराज तथा उनके भाई पांडव सभी भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगे रहते थे और उन्हें इस भौतिक जगत के मायावी सुख के प्रति तनिक भी आकर्षण न था। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, महाराज युधिष्ठिर भगवान मुकुंद मोक्षदाता भगवान की सेवा में अचल थे, अतएव उन्हें स्वर्ग में उपलब्ध जीवन के सुख का भी आकर्षण न था, क्योंकि ब्रह्मलोक तक में उपलब्ध सुख क्षणिक तथा भ्रामक होते हैं। चूंकि जीव शाश्वत है, अतएव वह भगवान के नित्य धाम परव्योम में ही सुखी रह सकता है, जहाँ से बारंबार जन्म मृत्यु रोग तथा बुढ़ापे के इस भूभाग में कोई नहीं लौटता। अतः ऐसा कोई भी सुख या भौतिक सुविधा जो शाश्वत जीवन प्रदान नहीं कर सकती, शाश्वत जीव के लिए भ्रम ही है। जो इस तथ्य को समझ लेते हैं वह विद्वान है, और ऐसा विद्वान व्यक्ति ब्रह्म सुखम के नाम से विख्यात वंचित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी भी भौतिक सुख का बलिदान कर सकते हैं। इस सुख के लिए वास्तविक योगी तक लालयत रहते हैं, और जिस तरह भूखा व्यक्ति भोजन के बिना अन्य समस्या सुख सुविधाओं से सुखी नहीं बनाया जा सकता, इसी प्रकार जैसे आध्यात्मिक परम सुख की भूख है, ऐसे उससे कितना ही भौतिक सुख क्यों न प्राप्त हो, किंतु इसकी यह भूख बढ़ती नहीं। अतएव इस श्लोक में वर्णित उपदेश को महाराज युधिष्ठिर पर या उनके भाइयों तथा माता पर लागू नहीं किया जा सकता। यह धृतराष्ट्र जैसे व्यक्तियों के लिए है जिन्हें शिक्षा देने के लिए विदुर विशेष रूप से आए। बात एकदम स्पष्ट है। काल हमेशा चलते रहते हैं। हर एक क्षण में हम मृत्यु के और नजदीक जा रहे हैं। किसी का आज जन्मदिन है, बर्थडे, आज या कल हुआ या होगा, ऐसा लोग मेरे पास आते हैं, बोलते हैं, और आज मेरा बर्थडे है, और मेरा जवाब है कि आपका डेथ डे है। हर एक दिन हमारा डेथ डे है, क्योंकि हर एक क्षण में हम वास्तव में हम मर जाते। मरण तो खाली एक क्षण में नहीं होते, तो हर एक क्षण में हम मर जाते। वो क्षण जो हो गया हो गया हो गया, वापस लाना संभव नहीं है। आयुष क्षण एकोपि न लभ्य स्वर्ण कोटि भी, करोड़ सुवर्ण का मुद्रा देने से एक क्षण का काल वापस लाना संभव नहीं है। तो इसलिए वो लोग जो धन से बहुत आसक्त है, बोलते हैं टाइम इज मनी, क्योंकि उनका विचार में तो हमेशा हर एक क्षण में व्यस्त रहने से हम ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन टाइम इज नॉट मनी, टाइम और मनी अलग ही है। मनी से एक टाइम का मूल्य और बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मानव जन्म प्राप्त करके हम वो मानव जीवन का आयु में वो सब माया से ही हम मुक्त हो सकते। किस प्रकार की माया, वैसे ही सोचना कि मनी सबसे महत्वपूर्ण है। सब बात हम जानते, इसलिए बोलता हूँ तो बात बहुत स्पष्ट है। यदि हम किसी व्यक्ति से बातेंगे कि तो मृत्यु का समय मुकेश अंबानी और रास्ते में घूमने वाले भिखारी जो है जिनके पास कुछ भी नहीं है, तो सब एक ही प्रकार का धन लेके जाते हैं मृत्यु के बाद। कितना? कुछ नहीं। तो आप ही अगर आपके पास लाख करोड़ रुपया है और एक क्षण के बाद आप मर जाएंगे, तो आपके पास एक भी पैसा नहीं रहेगा। तो सब जानते हैं, यदि हम ऐसे बोलते हैं तो सब हाँ 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 सही बात है ऐसे बोलते हैं। तो क्यों लोग इतना व्यस्त रहते हैं पैसे कमाने में, पैसे की रक्षा करने में? तो वही माया है, क्योंकि माया से लोग सोचते हैं कि पैसे से ही मैं सुखी होऊंगा। और गृहस्थों के लिए कुछ पैसा का जरूरत है आजकल, तो पूर्व काल में जरूरत नहीं था। तो जिनके पास कुछ ज़मीन थी तो वो ज़मीन से वो शाक सब्जी वो सब, और एक एक दो गाय, हर एक घर में कम से कम एक दो गाय रखने थे। और पूर्व काल में तो पैसा का जरूरत नहीं था, सब कुछ तो भगवान की प्रकृति से हम आसानी से मिल सकते। लेकिन आजकल तो सब कुछ पैसे से ही चलते, तो वो सब शक सब्जी अनाज जो पहले अपना अपनी ज़मीन से मिलता था, तो आजकल तो दुकान से खरीदना है। तो कुछ चाहिए, परंतु समझना चाहिए कि जीवन का उद्देश्य नहीं है पैसा संग्रह करना। तो ये बात बोल के सब स्वीकार करेंगे, परंतु वास्तविक जीवन में हम देखते हैं तो लोग तो उसी बात को विश्वास नहीं करते। विशेषकर आधुनिक युग में, क्योंकि सभी दिशाओं से वो प्रचार होते, तो पैसा कमाओ, सक्सेसफुल बन जाओ। सक्सेस का मतलब बड़ा पैसा वाला होना। तो हम भी बोलते सक्सेस सक्सेस बन जाओ। तो सक्सेस क्या है? त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म ना। सक्सेस है कि बहुत 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 जन्म लेने के पश्चात हम जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त होंगे और हम भगवान के पास जाएंगे और भगवान के धाम से हम वापस यहाँ नहीं आएंगे। तो वो जीवन का वास्तविक सफलता है। तो इस तात्पर्य में युधिष्ठिर महाराज का विचार और धृतराष्ट्र महाराज का विचार दोनों का तुलना है। धृतराष्ट्र महाराज हम बोलते हैं, तो वास्तव में तो महाराज थे कैसे? अन्याय से। और बारंबार विदुर और अन्य संजन उनके पूरा जिंदगी में बार बार विदुर धृतराष्ट्र को बताए कि वो जो तुम करते हो वो ठीक नहीं है, वो पाप कर्म है, वैसे नहीं करना चाहिए। तो मालूम होना चाहिए कि प्रकृति के नियम है और प्रकृति के नियमों के अनुसार जो बुरा काम करते हैं तो भविष्य में बुरा हाल मिलेगा। तो धृतराष्ट्र तो विदुर का उपदेश सुन के बार बार बोलते हाँ हो सही बहु आप जो बोलते सही है, लेकिन मैं अक्षम हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ जो आप प्रस्ताव करते। और युधिष्ठिर महाराज तो पूरी पृथ्वी के सम्राट होते हुए भी तो आसक्त नहीं थे, आसक्त नहीं थे वो सब धन ऐश्वर्य से, क्योंकि वो जानते थे कि पृथ्वी के राजा भगवान कृष्ण है, जगन्नाथ। केवल पृथ्वी के नहीं, पूरे जगत के राजा है जगन्नाथ कृष्ण। और भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज की व्यक्तिगत बंधु थे। और युधिष्ठिर महाराज का विचार में तो सब कुछ जो पृथ्वी में है जो मेरा है, और सब कुछ जो पृथ्वी में था तो सब युधिष्ठिर महाराज का था, तो वो तो कुछ नहीं है। भगवान का कृपा कटाक्ष प्राप्त एक क्षण में, भगवान की कृपा कटाक्ष प्राप्त करने से और बहुत बहुत असंख्य गुणों के कल्याण होते। वो सब पृथ्वी का राजा होने से तो युधिष्ठिर महाराज हमारे आदर्श है, नहीं तो क्योंकि वे राजा थे, क्योंकि वे भगवान की शुद्ध भक्त है। तो श्रीमद् भागवत से हम भगवान का चरित्र, भगवान की लीला, ये सब वर्णन मिलते हैं और हमारी शिक्षा प्राप्त करने के लिए भगवान की लीला कथा सुनने से और भी महत्वपूर्ण है भगवान के भक्तों का चरित्र श्रवण करना, जिससे हम उनके आदर्श के अनुसार भगवान की भक्ति करेंगे, जिससे हम युधिष्ठिर महाराज, प्रह्लाद महाराज, ये सभी भक्तों की भक्ति से प्रेरित होंगे और उनकी कृपा से और उनका मार्गदर्शन से हम भी प्रयास करते हैं कृष्ण की भक्ति करना। तो ये सब बातें जो श्रीमद् भागवत में है और श्रील प्रभुपाद के तात्पर्यों में, तो हम सबों के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। हम सदैव सभी औरों से सुनते रहते हैं वो माया का उपदेश, वो चीज़ देखो, वो खाना का स्वाद लो, वो आइसक्रीम आइसक्रीम खा के पेट भरो, यावत जीवन सुखम जीवत, ये नास्तिकों के पंडित चार्वक मुनि, वो भी वो नाम उसको मुनि देते, मुनि का मतलब मनीषी बुद्धिजीवी, लेकिन उसका प्रचार क्या था? ऋणं कृत्वा कृतम, ऋणं कृत्वा गृहम कृतम पिबत यावत् जीवत सुखम जीवत भस्मभूतस्य देहस्य किं पुनः आगमनो भवेत्। ये चार्वक मुनि तो डार्विन के पहले डार्विनवादी था कि जब तक हम जीते हो तब तक तो जीवन सुखी होने चाहिए, और कैसे? घी, ज़्यादा घी खाने से, तो ऋण से, चोरी से, खरीदने से, जैसे भी हो तो घी घी का खाना चाहिए, वो तो सुखी जीवन का तात्पर्य वो है, ज़्यादा घी खाने का। और उसके बाद वो क्या, वो पेट खराब हो जाएगा, वो चिंता मत करो, तो वो डॉक्टर से कुछ दवा लो और भी घी खाओ। और क्या कहते हैं कि वो लोग जो कहते हैं कि पुनरागमन होते हैं, पुनर्जन्म होते हैं, उसमें विश्वास नहीं करना। तो मृत्यु के बाद वो शव तो आग में डालना है और समाप्त, खत्म हो गया सब कुछ, तो कोई वापस नहीं आएगा। तो जब तक हो तब तक जगह को भोग करो, ये सब मूर्खों का उपदेश है। और हम जानते हैं कि जगत हमारे लिए भोगने के लिए नहीं है, जगन्नाथ भुगता है। भुक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानम ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। लोग जो चार्वक के अनुयायी है या डार्विन के अनुयायी है, बोलते जगत को भोग करो, लेकिन वो जितने भी प्रयास करते हैं इंद्रिय सुख के लिए, तो उनके मन में अशांति रहती है, क्योंकि कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत। भगवान कृष्ण के भक्तों के मन में कुछ भी स्वार्थ की इच्छा नहीं है, इसलिए वे शांत है। शांत है क्योंकि जानते हैं कि भगवान कृष्ण भोगता है, तो यदि मैं प्रयास करता हूँ इंद्रियों के द्वारा सुखी होना, तो वो तो नहीं होगा। तो सब कुछ जो है जगत में है, जो सब पैसे सब वस्तुओं जो मेरे पास में आते, मेरे हाथ में आता है, तो वो सब भगवान को अर्पण करना चाहिए। जैसे नर्मदा या किसी पवित्र नदी में स्नान करने का समय, तो वो पवित्र नदी की पूजा भी करने है नहीं, और कैसे गंगा नर्मदा की पूजा करने है, तो वो नर्मदा का जल उठा के नर्मदा को अर्पण किया है। तो इस प्रकार वो सब कुछ जो हमारे हाथ में आते हैं, तो वो जानते हैं कि ये सब भगवान की संपत्ति है, तो भगवान को अर्पण करना चाहिए। तो यदि हमारे पास पैसा है तो भगवान की सेवा में लगाना है, और जो जरूरी है संसार चलाने के लिए, तो इस बुद्धि से संसार चलाना कि ये मकान, मेरी पत्नी, बच्चे, वो सब कुछ मैं वो सब संसार में चलाता हूँ, तो किस हेतु से? भगवान की सेवा में, भगवान की भक्ति में, तो अपना इंद्रिय सुख के लिए नहीं है। तो भगवान भोक्ता है और भगवान मालिक है। यदि मेरे पास कुछ पैसा आता है तो समझना चाहिए, तो वो तो मेरा नहीं है। जैसे एक कंपनी में, तो वो मालिक वो एक नौकर को कुछ पैसा देते हैं, वो पैसा देते हैं किस लिए? वो नौकर तो वो पैसा लेके तो कंपनी का काम करेगा। हाँ, वो पियन को पैसा देते हैं और बोलते हैं, तो वो पैसा लेके और दूसरा कंपनी को जमाता। तो यदि नौकर सोचे तो मेरा हाथ में है, वो मेरा पैसा है, तो वो बड़ी गलती है, अपराध हो, तो उसका कर्तव्य है वो मालिक का आदेश के अनुसार वो पैसा उस प्रकार प्रयोग करना। तो इस प्रकार यदि हमारे हाथ में कुछ धन संपत्ति है, हमें समझना चाहिए कि वो तो मेरा नहीं है, वो कृष्ण मुझको दिया है, और वो सब कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। और कृष्ण परम बंधु है, जो जानते हैं, तो परम बंधु मतलब सब प्राणी के परम बंधु है कृष्ण। तो जो ऐसा सोचते हैं तो किसी दूसरा प्राणी को द्वेष नहीं करेगा। अशांति का एक मुख्य कारण है हिंसा करना, दूसरों को द्वेष करना। तो यदि हम किसी को द्वेष नहीं करते तो मन शांत रहेगा। तो इस प्रकार कृष्ण के भक्तों शांत है, और शांत है क्योंकि जानते हैं कि भगवान मुझको रक्षा करते हैं। और यही जीवन, जीवन में वो सब कुछ जो चलते हैं, तो चलते भगवान की इच्छा से, तो जो भी होगा भगवान की कृपा वैसे ग्रहण करते हैं। और भविष्य के लिए भी कुछ चिंता नहीं है भक्तों, क्योंकि जानते हैं कि ये जन्म के बाद, ये जीवन के बाद तो क्या होगा भगवान जानते हैं। यदि भगवान चाहते हैं तो वे उनके पास उनके धाम में रखेंगे, और यदि भगवान की इच्छा हो तो मैं वापस इस भौतिक संसार में वापस आऊँगा इनकी इच्छा के अनुसार। तो यही जीवन में, अगले जीवन में मैं भगवान की रक्षा में हूँ, इसलिए भक्तों चिंतित नहीं रहते, पूरा शांत रहते। और भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली आशांत, जो भौतिक जगत को भोगना चाहते हैं, इंद्रिय तर्पण करना चाहते हैं, सदैव चिंतित रहते हैं। तो ऐसे चिंतित है कि अभी मेरे पास इतना पैसा है तो और ज़्यादा होना चाहिए, और इसलिए चिंतित है। और चिंतित है क्योंकि सोचते हैं कि कोई चोर आएगा, फिर वो सब धन हरण करेगा, या आईटी वाले आएंगे और सब लेके जाएंगे, तो बहुत या वो मेरा बिजनेस तो एकदम नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार चिंतित रहते हैं। और जो पैसे वाला या पैसाहीन जो भी अवस्था में है, भगवान के भक्तों सोचते हैं कि जो है मेरे पास ये सब कृष्ण की है। और परम आदर्श है ये बात है कि वो सुदामा, सुदामा जो बहुत बहुत दरिद्र थे परंतु पूरा सुखी थे भगवान कृष्ण का संस्मरण में, कि गुरुकुल निवास का समय मेरा सहाध्याय भगवान कृष्ण थे, और ऐसे हमेशा स्मरण करते थे दरिद्र सुदामा विप्र, और इस प्रकार पूरा प्रसन्न रहते थे। और बाद में द्वारका जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त करके वापस आके देखते, ओ जिसमें वो मेरा झोपड़ा था अभी तो बहुत सुंदर राजमहल बन गया भगवान श्री कृष्ण की कृपा से। और सुदामा उस समय क्या सोचेगी, वो सब कुछ जो है तो भगवान श्री कृष्ण की सेवा में अर्पित करना है। तो इस प्रकार सुदामा के मन में धनी होने के पूर्व और पश्चात तो उनका मन पूरा शांत रहता था, क्योंकि सदैव कृष्ण भावनामय थे। तो ये सब शिक्षा हम शास्त्र से मिलती है। तो हमें युधिष्ठिर जैसे होना चाहिए, धृतराष्ट्र जैसे नहीं है। तो हम युधिष्ठिर महाराज जैसे पृथ्वी के सम्राट नहीं होंगे, और युधिष्ठिर महाराज जैसे भगवान कृष्ण के व्यक्तिगत बंधु तो वो स्थिति प्राप्त करना दुर्लभ है। तो हमारी प्रार्थना है कि हे भगवान, मुझको अवसर दे आपके भक्तों के भक्तों के भक्तों के भक्तों की सेवा करना। यदि हम युधिष्ठिर महाराज के एक नौकर के नौकर के नौकर के नौकर के नौकर की नौकरी कर सकेंगे, तो हम परम धनी होंगे। वो धन है कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्तों की सेवा करना का अवसर प्राप्त करना परम धन है। और इस प्रकार भक्तों सदैव सुखी रहते। भक्तों तो बहुत चिंतित नहीं रहते, तो कैसे मैं बड़ा धनी बन जाऊंगा, वो तो खुद ऐसे उनका वैसे एम्बिशन नहीं है। उनका एम्बिशन है, जीवन का लक्ष्य है कि आई नंद तनुज किंकरं पतितं मां वशमे भवं बुधो कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशं विचिन्तय। इच्छा है कि मैं भगवान के चरण में धूल सदृश, एक धूल का एक कण जैसे उपाद हम मिलेंगे, हम घोर संसार से मुक्त होंगे और भगवान श्री कृष्ण के चरण राज में स्थान प्राप्त करेंगे। तो आजकल वो बच्चे से हम पूछते तो भविष्य तो क्या होगा, भविष्य में तो क्या इच्छा हो, तो पायलट होगा या एस्ट्रोनॉट होगा या क्या क्या इच्छा है। तो भक्तों की इच्छा है कि मैं भक्तों के भक्तों के भक्तों के भक्तों के भक्तों की सेवक होऊंगा, और इस प्रकार इस जीवन में भी वे एक क्षण भी तो फालतू काम में व्यतीत नहीं करते। स्मार्तव्य सततम विष्णु, सदैव भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। तो वो संभव होगा यदि हम नियमित रूप श्रीमद् भागवत की कथा सुनते हैं। श्रीमद् भागवत की कथा ओ उसमें भगवत तत्व ज्ञान है, भगवान कृष्ण और उनके अवतारों की लीला कथा होते हैं, उनके भक्तों का चरित्र का वर्णन है। तो सामान्यतः भगवत कथा हम भगवत कथा को शब्द सुनने से हम क्या धारणा मिलते है, तो व्रज लीला की कथा तो वो है भगवत में, और उसके पहले यही सब उपदेश है नौ स्कंद में, जिसका बार बार ध्यान से सुनने से हम अधिकार मिलते हैं भगवान कृष्ण की गहरी लीलाओं व्रज लीलाओं की कथा श्रवण करने के लिए। तो अभी हम प्रथम स्कंद से एक श्लोक के ऊपर प्रवचन दिया और सुना, जिसमें हम शिक्षा मिलती है तो किस प्रकार पूरा जीवन का काल हर एक क्षण तो भगवान कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। हरे कृष्ण। अगर किसी का प्रश्न हो पूछिए। पचास शत प्रतिशत वो क्या बोलते हैं 50% पचास प्रतिशत भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। आजकल तो टैक्स वाले 50% लेते हैं। और यदि आप नहीं देते तो आपको पकड़ के जेल में फेंकते और दूसरों का घर से वो जेल चलते नहीं। श्रील प्रभुपाद वैसे बोले, लेकिन यदि हम भक्तों को वो छाप देंगे तो इतने ज़्यादा पैसे देने तो लगते ही तो नहीं कर पाएंगे, और हताशा से हमसे दूर जाएंगे। तो यदि आप नंदग्राम में निवास करेंगे तो आप शत प्रतिशत भगवान की वो सब जो पैसा जो आप कमाते हैं तो शत प्रतिशत भगवान की सेवा में लगा सकेंगे, क्योंकि कोई वहाँ पर पैसा नहीं कमाते। ये आधुनिक युग में जीवन शैली बहुत कठिन है, नहीं बहुत बहुत कठिन। तो श्रील प्रभुपाद वैसे बोले, लेकिन किसी शिष्य को जबरदस्त से वो पैसा नहीं निकले प्रभुपाद। तो हमें भी गृहस्थों को बताना चाहिए कि कंजूस मत हो, केवल वो भक्ति भगवान को देना नहीं है, तो पैसा भी पूरा दिल दिया था लेकिन जेब में जो है तो रखता हूँ। मुक्त हस्त से पैसा देना चाहिए भगवान की सेवा में। और ऐसे हम देखते हैं बहुत भक्त जो मंदिर का निर्माण करने के लिए तो पैसा देते, क्या है, मैं बहुत दफे वो ऐसा देखता हूँ कि बड़े बड़े पैसा वाला तो कम पैसा देते भगवान की सेवा के लिए, और जिनके पास कम है तो बहुत दफे देखता हूँ कि वो पूरा सेव जीवन की पूरा सेविंग्स देते, 100% देते, 50% नहीं। और बड़ा धनी लोग बहुत तो 1% भी देने में बहुत संकोच करते। तो तन मन धन भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो पहले क्या तन मन धन पहले वचन देना है, मन और वचन सवाई माना कृष्ण पदारविंद यो हो वचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने। तो पहले मन कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए और दूसरा वचन भगवान का गुणगान करना चाहिए। तो प्राणाय अर्थाय अर्थाय ध्यावाचा, श्रीमद् भागवत में कहा गया है, भगवान कृष्ण ने कहा कि हम सदैव श्रेय आचरण सदा, हम सदैव श्रेय करना चाहिए। श्रेय का मतलब ऐसे आचरण, श्रेय आचरण सदा, जिससे सनातन कल्याण होगा हमारे और दूसरों के। इसलिए हमारा प्राण भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, अर्थ अर्थात जीवन का उद्देश्य और धन संपत्ति, प्राणाय आथाय ध्या हमारे बुद्धि मन भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, और वाचा वचन भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। हरे कृष्णा। हाँ भक्तों तो राजा जैसे है। तो वो श्रीमद् भागवत का अनुसार है, श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि कलयुग में गृहस्थों तो बहुत दरिद्र रहेंगे और सन्यासियों तो बहुत धनी। तो वैसे वास्तव में ऐसे नहीं होना चाहिए, इसलिए वो सब नया मंदिर जो मेरे प्रेरणा के अनुसार या मेरे देखभाल से निर्मित हो रहा है, तो उसमें वो डिजाइन है कि भगवान का मंदिर विशाल सुंदर वैसे होगा, और भक्तों तो छोटा सा वो खूटी में रहेंगे जिसमें विद्युत की व्यवस्था भी नहीं है। और विद्युत की व्यवस्था का मतलब तो पंखा भी नहीं है, एसी भी नहीं है। इस प्रकार हम प्रदर्शन करने चाहते हैं कि भगवान के लिए हम सब कुछ अर्पण कर सकते हैं, और हमारा खुद का दैहिक सुख के लिए एकदम मिनिमम होना चाहिए। और प्रचार के लिए भक्तों का, आधुनिक युग में भक्तों का गाड़ी में जाना है प्रचार करने के लिए, तो वो सबका जरूरत है प्रचार के लिए। और इस प्रकार भक्तों शिक्षा देते हैं कि सब कुछ जो जगत में है तो भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। ये सब असुरिक लोग तो उग्र कर्म से कार लॉरी इत्यादि बनाते हैं इंद्रिय तर्पण का हेतु से, तो ये सब असुरिक लोग जो बहुत मेहनत से ये सब चीज़ बनाया है, तो वो सब चीज़ लेके हम भगवान की सेवा करेंगे, प्रचार करेंगे। तो इस प्रकार हम दिखाना चाहते हैं तो कैसे दुनिया के सब चीज़ों भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। ये कार प्लेन ये सब व्यवस्था का जरूरत नहीं है, और अगर कोई ये सब इस्तेमाल करेंगे तो भक्तों का इस्तेमाल करना चाहिए, कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए, खुद का इंद्रिय सुख के लिए नहीं। ऐसे वो साधारण वर्णन वैसे है, भगवान कृष्ण भी अर्जुन को बताया कि वो क्या है भोगना महिम क्या है श्यामानंद स्वर्ग से प्राप्तम हटवा तो स्वर्ग से प्राप्तम जिद्वा वा भोक्ष से महिम। यदि रण में जीत हो तो महिम पृथ्वी भूमि दुनिया को भोग करेगा। तो वैसे है भक्तों दुनिया को, यदि वो जो धनी है तो दुनिया के चीज़ों को भोगते हैं, और कष्ट में कष्ट मिलते हैं। कुछ भक्त तो बहुत धन में रहते हैं, कुछ भक्त तो बहुत दरिद्र होते हैं। जैसे भगवान कृष्ण मिथिला गए हैं, और वहाँ पर इनके दो बड़े भक्त हैं, एक थे राजा बाहुलाश्व, और दूसरा एक दरिद्र ब्राह्मण शुद्धदेव। तो बाहुलाश्व महाराज तो राजा थे और ऐश्वर्य में रहते थे, और इस प्रकार और दुनिया को भोगते थे, और शुद्धदेव तो दरिद्र थे तो कष्ट में जीवन व्यतीत किया है। लेकिन दोनों के मन में कृष्ण भक्ति प्रमुख थी कि मैं अभी धन ऐश्वर्य को भोगता हूँ, तो वो तो बाहुलाश्व का मन में नहीं था। और कि मैं बहुत कष्ट में हूँ, वो छूटदेव का मन में नहीं था। उनके उनके मन तो पूरा कृष्ण की सेवा में नियुक्त थे। जैसे हमारा श्रील प्रभुपाद तो अमेरिका अमेरिका में तो पहले बहुत दरिद्र अवस्था में थे, और बाद में तो बहुत बड़े बिल्डिंग, बहुत शिष्य, तो बहुत धन ऐश्वर्य गौरव में रहते थे, और उनके मन तो दोनों अवस्था में एक ही था। तो ये सब बड़ा 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 संस्थ बनाने के पहले श्रील प्रभुपाद तो कृष्ण के शुद्ध भक्त थे, और बहुत ऐश्वर्य प्राप्त करने के पश्चात शुद्ध भक्त थे। तो भक्तों जो दुनिया को भोगते हैं लेकिन उदासीन रहते, उनके मन में ऐसा नहीं कि अभी मैं सुखी हूँ क्योंकि मेरे पास ज्यादा धन है, वैसा तो नहीं है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव श्री सुदर्शन चक्र की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा।